परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
ऐसे गरीब दास साहेब जी छुड़ानी गांव जिला जज्जर वर्तमान में हरियाणा, तो वहां परमात्मा सह शरीर आए, सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा, बूढ़ा बाबा का आरंभ जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा संत के रूप में। मुसलमान में होते जिंदा, जैसे कोई अलग अलग वेशभूषा होती है उनको अलग अलग बेख बोलते हैं, जिंदा महात्मा होते हैं। एक ओवर कोट सा पहनते हैं, काला सा घुटनों के नीचे तक का, एक अंडरवियर पहनते हैं, सिर पर एक टॉप पहनते हैं, इस पर और दाढ़ी और सिर के बाल बड़े बड़े होते हैं। इस वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो वो परमात्मा जिंदा के वेशभूषा में, गरीब दास जी 10 वर्ष के थे, गवे चरा रहे थे खेतों में, और भी बहुत से पाली गवाले थे। वहां गरीबदास जी को आकर मिले, सतलोक लेकर गए, वहां उन्होंने सब ब्रह्मंडों की जानकारी दी, अपनी यथार्थता बताई, वहां सतलोक में दर्शन दिखाए। गरीबदास जी के शव की अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर दी थी, चिता पर रख दिया गया था मृत जानकर, इतने में आत्मा वापस भेज दी परमात्मा ने। खड़े हो गए गरीबदास जी, फिर ये वाणी बोलन लग गए जो परमेश्वर ने उनके हृदय में फीड कर दी थी कबीर जी ने, तो वही वाणी आज परमात्मा कबीर जी की महिमा से ओतप्रोत है, गरीबदास जी के द्वारा लिखी गई, बोली गई, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी महात्मा संत के द्वारा वो लिखी गई, आज हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे ही परमात्मा नानक जी को मिले थे, एक वो परम अक्षर ब्रह्म अकाल मूर्त सतपुरुष कबीर देव जी बेई नदी पर, और वहां से उनको अंतक ध्यान किया, 3 दिन तक उनका शरीर कहीं छुपा दिया, सतलोक में लेकर गए आत्मा को। उसके बाद 3रे दिन तो वापस छोड़ा, तो नानक जी ने नौकरी त्याग दी, परमात्मा के प्रचार के लिए निकल पड़े, और पहली उदासी पहली यात्रा बनारस में पहुंचे। वहां परमात्मा को देखा अपने अपने यथार्थ रूप में, जो सतलोक में भी देखा था उसी रूप में, और वहां जुलाहे की भूमिका करते हुए जुलाहे का कार्य करते देखा। तब नानक जी ने प्रश्न नंबर 24 पे दर्ज है जो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, उसमें लिखा कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता, ये बैठा लोगो भगवान, ये धानक रूप में परमात्मा विराजमान है, देख लो कौन जनता मान है, क्योंकि सब मिसगाइडेड थे। तो वो कहने लगे कि ये पंजाब से आया हुआ व्यक्ति बोला बाला, ये नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है, ऐ श्रद्धालु भोला है, यानी वो परमात्मा को आंखों देखा हुआ, और वो अन्य नौके ये तो नीरू का पुत्र है, ये क्या जाने भगवान के, ये भगवान थोड़ा ही हो सकता है। तो वो परमात्मा ऐसी लीलाएं करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। तो यही प्रमाण वेद बता रहे हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 है। ये कहां से छपा है ये वेद? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली 2। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इन्होंने यहां लिखा है महर्षि दानंद सरस्वती कृत है, लेकिन ये दानंद जी का अनुवादित नहीं है। दानंद जी ने अनुवाद नहीं कर रखा है, गलत लिखा है इन्होंने। चलो हम अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये इनके फोन नंबर है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86। ये है मंत्र नंबर 26। इसमें क्या बताया है, अनुवाद किया है ये, इसमें मूल संस्कृत है, ये सारी मूल संस्कृत है। इसमें ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोलने लगे, वह को हम वह बोलते हैं, ये कबीर। यहां देखो इनके द्वारा अनुवाद है, ये किसी और ने किया हुआ अनुवाद, महर्षि दानंद का नहीं है, वो होता तो बट्ठा बठा देता इसका। यज्ञ करने वाले यजमानों यानी भक्तों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता हुआ नष्ट करता है, विघ्नों को नष्ट करता है उनको, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि भगवान परमात्मा का वास्तविक रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है, तो यहां हम चरम दृष्टि से उसको नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने रूप का हल्का तेज पुंज का शरीर धारण करके, उसको हल्का करके यहां आता है अपने रूप को। इसी सिद्ध की साकार है भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां इन्होंने क्या किया है, इसमें यो हलंत वाला रह जाता है, अत्य अलग कर देते हैं, ये अत्यो कबीर अत्यो, रह छोटा हो जाता है, तो उस रह को इन्होंने यहां दो अपसर्ग में बदल दिया, तो ये कवि बना दिया। तो कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कवि का अर्थ काव्यकार तो हो सकता है लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ तो परमात्मा ही होता। तो हम इसको, हम जैसे इसको हम कबीर देव लिख दें, वो कबीर देव, वह परमात्मा कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से चलकर वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को, व्यक्तियों को प्राप्त होता है। आगे देखना, अब 27 में ये क्या लिखा कि प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं, ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं किया है, जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। अच्छा, प्रकाश पुंज परमात्मा को, प्रकतेजो में परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर, यानी वो तीसरे स्थान पर ऊपर भाग पर विराजमान है, तो साकार है, एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है और प्रकाश रूप है। अच्छा, अब वो किस उद्देश्य से यहां आता है ये क्लियर करेगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 82 का मंत्र एक से लेकर तीन तक हम आपको दिखाते हैं। ये 82 है, यहां ऊपरी ये है 82, और यहां देखिए नीचे इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सर्वोप उत्पादक प्रभु यानी सबको सबकी सृष्टि करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप और सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, वह राजा के समान देखने योग्य है, दर्शनीय है, राजा के समान दर्शनीय है यानी साकार है वो प्रभु, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को, वह श्रेष्ठ भक्तों को, वह यानी अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है आकर के। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उत्पन्न वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब देखो ना, जिस प्रकार वो परमात्मा कैसे मिलता है कि जैसे विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो वो विशेष किसी स्थान पर गिरती है, जैसे पहले अभी वही स्वभाव है लेकिन अब काशी धातु रही नहीं, पहले काशी धातु के बेले थाली होया करते थे, परात भी होते, बेले थाली ज्यादा होते थे और उनको बाहर अगर वर्षा में रह जाते थे तो उनके ऊपर अमूमन कहीं ना कहीं बिजली अवश्य गिर जाती थी, आसमानीय बिजली, क्योंकि उसका उससे कोई विशेष कनेक्शन है जिस पर वो आकर्षित होती है। तो इसी प्रकार बताया है कि वो परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को मिलता है जो मिलने योग्य हैं, जिन पर वो उनके लिए आ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो कुछ एक पुण्यात्माओं को विशेष रूप से मिले, उनको ही ज्यादा वो ही समझ सके उनको, बाकी वो टोड़ गेल 64 लाख तो चेले हो गए थे, वह बिना समझ सके, और अन्य जो ऋषि में ऋषि मंडलेश्वर गुरु आचार्य और वह बिना मालिक को पहचान सके, तो उनके लिए आना ना आना बराबर होता है भगवान का। तो विशेष उन्हीं आत्माओं को आकर मिलते हैं जो उनको समझ सकते हैं और उनका आगे प्रचार कर सकते हैं, जैसे बिजली अपने स्नेह वाले पदार्थ पर आकर गिरती है, मैटेरियल पर गिरती है, इसी प्रकार परमात्मा भी उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर किस उद्देश्य से आते हैं ये और देखिए आगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का आपने एक मंत्र पढ़ा कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वह वर्णीय पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त हैं उनको, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होती है, उद्देश्य क्या है उसका आने का परमात्मा का? अब दूसरा मंत्र है, यहां लिखा है कबीर वेदस्य, ये कबीर इस यो रे है ऊपर लगा हुआ हाफ, तो इसका इन्होंने कवि शब्द कर दिया हटाकर रे। अब जैसे ये समझना जरूरी हो गया, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है, आप देखिएगा ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है और इसको ये रे हटा करके दो अपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं। ये यजुर्वेद अनुवाद किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, कंप्लीट 40 के 40 अध्याय अनुवाद किया है महर्षि दयानंद, इसका राइटर नहीं है, केवल अनुवाद करता है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है। चालीस के चालीस अध्याय आगे लिया था ना। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर इतने थे। अब इसमें दिखाएंगे आपको कि एक 36 नंबर पृष्ठ, 36 नंबर अध्याय में यह स्पष्ट किया, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यह है 6300 अध्याय यानी 36वां अध्याय। इसमें यहां लिखा है ये रचे वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द है यानी यजुर्वेद का जो ये ऊपर का हिस्सा हटा के, जैसे इसमें यहां लिखा था ये यजुर्वेद है, ये रे हटा के और यहां अपसर्ग लगा दी। ये 36 में जाएगी प्रथम मंत्र में, ये प्रथम मंत्र में यजु। अब इसका अनुवाद करते समय दानंद जी ने क्या किया है, यजु को यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल ठीक किया। अब इस यजु को कोई नहीं समझ सकता, जबकि इसके साथ ये लिखना पड़ेगा यजुर्वेद है। जब ये यजुर्वेद लिखा जाएगा तो ऊपर रह लाना पड़ेगा, तो हम इसको यजुर्वेद बोलते हैं, यजुर्वेद अपने लोकल लैंग्वेज में। तो ऐसे ही कबीर देव ये अपसर्ग हटा दिए, हटाकर रह हटाकर अपसर्ग लगाने से जो कवि लिख दिया उन्होंने, तो हमने जब कबीर देव लिखेंगे तो रह ऊपर लाना पड़ेगा, तो हम कबीर देव कहने लगे, कबीर कबीर साहब, देव माने परमात्मा। तो ऐसे अब भ्रंश हो गया, इस कवि को हम कबीर कहने लगे। ये वास्तविक नाम है प्रभु का जो वेदों में प्रमाणित है, और इस यथार्थ नाम से ही परमात्मा यहां आते हैं, और इसी का यथार्थ ये वास्तव यथार्थ नाम भी मालिक का यही है। जैसे सत्पुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनके उपमात्मक नाम है, उपाधि के नाम है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम अन्य होता है, और वैसे उनको प्रधानमंत्री, लैंग्वेज डिफरेंस होने से प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनका शरीर का नाम कोई और, वास्तविक नाम और होता है, ये उपमात्मक नाम उपाधि के नाम। तो अब यहां कबीर देव को समझन में आसानी हो जाएगी, आपने भ्रमित ना होगे। ये देखिएगा, अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का इब आप दूसरा मंत्र पढ़ रहे हैं। यह लिखा है कबीर वेदस्य, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे अध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। परमात्मा भी कहते हैं अपनी वाणी में, पहुंचूंगा छन्न एक मजन अपने के हेत एक सन में, और आप इन्होंने लिख दिया कवि, इसको कवि लिख दिया। हमने यह लिखना चाहिए ये कबीर देव है, कबीर देव कबीर साहब, जैसे भी आपको उदाहरण दिया था यजुर्वेद का। तो अब इसको हम अगर कबीर देव लिखा, तो यह लिखना चाहिए हमने इसको पूरा पूर्ण करके कबीर देव, वो कबीर अगर इसी दीप सुद्धि हिंदी में लिखा तो कबीर देव लिखे, और हम उसको कबीर देव कहने लगे कबीर साहब, वो कबीर साहब हैं, आप कबीर हैं, आप कबीर साहब हैं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। ये उसको कवि कहते हैं, जो व्याकरण के मास्टर मानते अपने आपको, वो कहते हैं वो तो कवि है, तो आप ये सोच रहे वो कवि साहब है, हम उसको कबीर साहब कह दे, बोलने का अंतर है, वो वही परमात्मा है जिसका वेद गुणगान कर रहे हैं, जो काशी में आया था जुल्हा रूप में, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके ही सोम आप हमको सुख दें। अब तीसरे मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र 3, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए आप सर्वव्यापक नहीं आप है आप गत स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। अपुण्य आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है कि आध्यात्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे मुखे माने उनके मुखारविंद से उनके मुख कमल से बोली गई वाणी में विस्तार से कहे गए और उनको जानकर फिर आप पूर्ण रूप से यथार्थ भक्ति करोगे और आप फिर भ्रमित नहीं रहोगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी तब तो तू योग को प्राप्त होगा तब तो तू भगत बनेगा यानी तब तो तू भक्ति के योग्य होगा भक्ति तेरी प्रारंभ होगी। और गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय में प्राणी की जितनी श्रद्धा रह जाती है उसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान को तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के उपरांत उस परम अक्षर ब्रह्म की स्थिति से परिचित होने के उपरांत आपकी जो श्रद्धा हमारे अंदर रह जाएगी अन्य भगवानों में रह जाएगी। पहले क्या होता था कि सभी साधन तालाबों से ही हुआ करते थे जैसे सिंचाई भी तालाब से और पानी पीना भी पशुओं को पियाना भी तालाब से ही होता था। तो इस प्रकार उसमें वर्षा हो जाए तो वो तालाब छोटा तालाब जलाशय होता था वो भर जाता था और यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता है और उस पर आधारित प्राणी भी संकट में पड़ जाते हैं उनकी भी जान चली जाती है प्यासे मर जाती है और उन प्राणियों को फिर बहुत बड़ा सरोवर बहुत बड़ा जलाशय बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए जो 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो उसका। तो कहा कि उसके पश्चात उन प्राणियों की आस्था श्रद्धा जितनी उस छोटे जलाशय में रह जाएगी उसकी बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत ऐसे ही तेरी श्रद्धा उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के उपरांत उसके ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत छोटे अन्य देवताओं में भगवानों में ऐसे तेरी श्रद्धा रह जाएगी। अपने आत्मा उस छोटे जलाशय में जो आश्रित थे वो जल बुरा नहीं था लेकिन वो अपर्याप्त था उसकी अक्षमता बहुत कम थी। इसी प्रकार हम जिन भगवानों की साधना करा करते वो बुरे नहीं थे लेकिन पर्याप्त नहीं थे और अब हमने पूर्ण परमात्मा मिल गया जलाशय मिल गया कौन ऐसा नालायक से जो पाछिन रहेगा। अब कोई एमएलए है और उसने कोई मुख्यमंत्री बनाता हो समझ की बात इतना संकेत बतेरा तो हमने जो उपलब्धि हो तो हम पाछे कैसे पीछे रहेंगे। तो इसी प्रकार इस अध्यात्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत आप जी की श्रद्धा अन्य भगवानों में आप बैठ जाएगी वो बुरे नहीं लगते लेकिन वो मारे काम के कोना हमने जो वस्तु चाहिए उनके पास है नहीं। तो ये ज्ञान से ही प्राप्ति होती है। अब वो सच्चिदानंद गण की वाणी सुनाएंगे आपको थोड़ी। अब जैसे आपने श्रीमद् देवी भागवत में पढ़ा के कलियुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। हर कित वेदों में दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं, इससे तक उन्हें वेद का ज्ञान नहीं था, उनको विश्वास नहीं हो पाया। ओम नाम का जाप वो जप जपा के छोड़ छाड़ दिया, फिर अपना जंतर मंत्र, क्योंकि देवी की उपासना का एक मंत्र हमने आपको दे रखा है, वो केवल उस एक मंत्र से कई वर्षों तक उसका जाप करके सिद्धियां प्राप्त कर लेते, जिससे उनको उन सिद्धियों के आधार पर वो अन्य जनता से फिर धन इकट्ठा कर लेते थे उन सिद्धियां दिखाकर। उन वो यहां तक सीमित हो गए। फिर पुण्यात्मा आप जी को जो मंत्र दिए गए हैं ये पूरे निष्कर्ष यानी यथार्थ मंत्र है, जो प्रथम मंत्र है, तो आप जी ने इसमें एक का किसी का जाप नहीं करना है। जैसे डॉक्टर ने वैद ने एक चूर्ण बना रखा है और उस चूर्ण के अंदर उसने हर तरह की दवाइयां मिक्स कर रखी है, दो तोड़े फलानी चीज, दो तोड़े वो, दो, और उसमें से एक ने कोई खावे तो दवाई का काम ना करे वो रानी कर देगी, थोड़ा बहुत चाहे लाभ भी कर दो लेकिन वो रोग ना कटे, तो सभी को मिलाकर खाने से वो रोग नाशक होगी। तो इसी प्रकार वेद ने जो दवाई दी वो सही होती है। अब क्या बताते हैं परमात्मा सचिदानंद घन की वाणी, काछे भेक कहां वे भांडी, गट में बैठी दुविधा रांडी, नारी पांच पच्चीसों पूता, ता कारण फिरता रूता रूता, अजरी बजरी करे बयाना, जिन शब्द अतीत मैल नहीं जाण्या, दोती ने तीन ओड़ी कर्मा, इंद्री नाल चरावे बर्मा, गज कर्मी गुरु आई चेरा, धोवे आत कमल नित फेरिया, सट कर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे निकाई, पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या, चौरासी आसन बस कीने, अनरागी नी तत नचीने, काम धेनु का कित है बासा, अमृत दूजे पर वे आसा, काम धेनु दू पीओ साधु, दुर्लभ दे सतलोक अगादू, तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली, चौथी सुन लंघे जन कोई, आवागमन बहुर ना होई, मेर दंड की बाट बताऊं, पैठ दरी बे अमृत ल्याऊं, अक्षर धाम की डोरी सूची, सोला संखी रामत ऊंची, मकर तार का मार्ग जीना, भेद अभेद शब्द घर चीना, सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहोर ना हंसा कर है फेरा, सतलोक से सतगुरु आए, अनसा आन शब्द बिरमाए। अब परमात्मा जो है यहां तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, सच्चा ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वो सतगुरु कहलाते हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले, क्योंकि नकली गुरु घने होते हैं, इसलिए सतगुरु यहां लिखा है सचिदानंद घन की वाणी में, जो गरीबदास जी को परमात्मा अपना भेद बताया, फिर आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने आगे ये अमरवाणी लिपिबद्ध करवाई, उसको पढ़ रहा दास। सुन मंडल सतलोक बसेरा, बहुर ना हंसा कर है फेरा, सतलोक में सुन मंडल में सतलोक है सबसे लास्ट पॉइंट ऊपर, वो तीन चार लोक है, और उसमें सुन मंडल सतलोक बसेरा, और वहां जाने के बाद बहोर ने हंसा कर है फेरा, फिर वो लौटकर संसार में कभी नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में जो आपने पढ़ा, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई और फिर कहा कि उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जल जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है वही पूजा के योग्य है, नथिंग एल्स। तो यहां उस सचिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा, सुन मंडल सुन मन ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है रहने की जगह है, बसेरा माने रहने का स्थान, और बहुर ना हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहां फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परमपिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गुसाई, दरवे नूर जल में ले जाई। अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भव जल आण उबारे। लख चौरासी बंधन तोड़े, अनरागी से चश्मा जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुनमंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुनमंडल में रहता है, यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो तो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद भर रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुनमंडल रहते अविनाशी। सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई। तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए। सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा। जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी। जहां राम रहीम करीम ना कोई, अले अलेख इसम नहीं दोई। खुद खुदाई जहां ना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई। नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही। कर्तरम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण ना पंडित काजी। धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी। जहां जीवन सीवन सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता। बेगम पुरा ब्रह्मगत आदु, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये कच्छ भेद कहवा बांडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। धोती नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा। सौ पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। धोती नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, योगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गज कर्मी गुरु आई कचेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गज करनी होती है कि जैसे पानी पी कर दो तीन चार गिलास और मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गज कर्मी गुरु आई चेरा और धोवे आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जैसे ना भी कमल है एक पेट में, हृदय में ना भी पेट के अंदर ना भी कमल है, और इसको साफ करते हैं एक विधि से, अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं और वो पेट को घुमा घुमा कर वहां जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं, वो केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने, गज कर्मी गुरु आईक चेहरा, वो धोवे आंत कमल नित फेरा। फेरा माने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे यूं घुमा देते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, भाई कमाल कर दिया, यूं तो तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी। फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे मैं, और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में, उससे वो भी साफ हो जाए, बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना, षटकर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे ना काई। ये षटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना, और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचो मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या, चौरासी आसन बस कीने, अनरागी ने तत्ने चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर नीचे न सिर कर लेना, शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सबने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है, तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, ये पांचों मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे। ये दास इस क्रोथाकांड के अंदर झूठे केस में जेल में था, वहां अलग से एक चार कोठड़ियां थी जिनमें वहां आगे आंगन था, और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था, और वहां एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला, बिल्ली का बच्चा, वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहां। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यू खड़ा हो जाता, कति खड़ा, और उसके पैर लगा के ऊपर, और न्यू पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, वो पूरे रूप से नो पेट पेट लगा के न्यू पूरा, और फिर उतरता, फिर दो तीन बार करता। और वो क्या करता था, वहां कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था, तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहां फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से, पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था, ये क्रियाएं उसके इबी भी याद है, और सुचे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति हमारे छोटे थे, हम तब अपना फ्रेश होकर के जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार के योगी पुरुष ज्यादा करते थे, तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहां क्या कहते हैं परमात्मा, तीन सुन में जम की जाड़ी, आसन योग नाम बिन खाली। अब तीन सुन, इन तीन सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का, इनके बीच में एक वोक्यम प्लेस होता है जिसको सुन बोलते हैं, वोक्यम प्लेस खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्म लोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वो क्यों प्लेस है, खाली स्थान सुन है वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वो क्यों प्लेस है, तीसरी सुन। और चौथी सुन है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, तीन सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघे जन कोई, आवागमन बौर न होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी आप मनमुखी नाम जाप करते हैं, उनकी न तो उनको कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है, और उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करने चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बनाए, तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है। क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दुंदु धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करे तरबीता, वेद पुराण बड पढ़त है गीता, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा, यो भी वैदा, वैदा मीन यूजलेस, व्यर्थ है। कौन कौन सा व्यर्थ है, सट दर्शन सट भेख कहावे, ये गिरी पुरी सन्यासी नागा कनपाड़े नाथ वैष्णो कहते हैं, छह प्रकार के सट भेख, सट प्रकार के इनकी विधि है, सट भेख कहावे हैं, और इनकी साधना देखने होगा धूम धूम धर्म चाह रहे हैं, कोई खड़ा होकर तपस्या कर रहा है, कोई उल्टा सिर करके कर रहा है, कोई कान पड़वा रहा है, कोई निर आहार रहता है, कोई एक पैर ठावे गर्दन में रख लेता है, खड़ा होकर साधना करा, नो दिखा आम आदमी ने भाई तो ढूंढा ठा रहे हैं भक्ति का, और उनके वो सारे डड़े ढो रहे हैं, क्योंकि ये पता चलेगा हमें सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दुंदु धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, वेद पढ़े तीर्थ व्रत करें, वेद पढ़नी यार फिर ये डेड हो, उसने वेद समझे को ना, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बातें पुराण अठारह, अर्दड़ को अंधे पत्ते खोआवे, भूल गया सृजनहारा, वेद पढ़े और वेद समझा नहीं, और फिर वो उल्टी साधना कर रहे, तो वेद समझे नहीं उन्होंने। तीर्थ व्रत करे तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता, ये भी वैदा है। अब वेद पढ़ लिए, गीता जी का नित पाठ कर लिया, और गीता जी बता क्या रही है, श्रीमद भगवत गीता में वर्णन क्या है वो समझा नहीं, तो वो पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है। अब जैसे गीता जी में लिखा है ऐसा करने से लाभ होगा, इसलिए कहा कि ये भी वैदा है, ये भी व्यर्थ है। चार संपदा बावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, ये चार संप्रदायें बनी हुई हैं, और इन संप्रदायों में कहते निज नाम नहीं है, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकदा, ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सतयुग के ब्राह्मण, ये ऋषि कहो चाहे ब्राह्मण कहो, ये सारे उवा बाई बकदे हैं, ये परमात्मा की वाणी बता रही है। उससे पहले आप जी को श्रीमद देवी भागवत से प्रमाणित कर दिया, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 400 पृष्ठ पर और 6 स्कंद में है। वो क्या कहते हैं कि व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, बता, तो वही यहां परमात्मा कह रहे हैं ये माला गाल हुए हैं मुक्ता, माला गाला करते जे गली में। अब ये माला गले में डालने की बीमारी कहां से शुरू हुई, पहले क्या था, ईबता हम ये अप टू डेट बाबूजी बनकर पेंट सेंट पे रहा, गोज भी कई के लवा लेते हैं जेब, पहले कोई कुर्ते नहीं हुआ करते ना पजामे, एक चादर लपेट लिया करते शरीर के, धोती बांध लेते और उसी में से शरीर पे कर डाल लेते थे, जेब नहीं होती थी। और माला एक नाम जाप करने का एक साधन है, तो वो जाप करते इतने जाप करते फिर उस माला को गले में डाल लेते थे ऋषि मुनि, और वो भक्त जैसी भी साधना करते थे ओम नाम का जाप करते थे, उनसे उसमें कुछ शक्ति आ जाती थी, वो किसी को आशीर्वाद भी दे देते थे उनको लाभ हो जाता था, किसी कोई उनको खाना खिला देता वो आशीर्वाद देते थे, अपनी कमाई में से उनको कुछ वो बेनिफिट दे देते थे भक्ति का। तो आम जनता की मन की भावना कि जिसने माला पहन रखी वो भगत आदमी है, और उस माला वाले की घनी श्रद्धा से सेवा करने लागे, गांव में आ जा सब, आज मारे रोटी खाइयो जी, आज मारे खाइयो जी, है? तो वो नो आदर सत्कार शुरू हुआ। तो फिर बाद में कुछ पाखंडिया ने पाखंड शुरू कर दिया, जो माला डाला है उसकी पूजा होती है। तो नकली लोग भी माला डाल के घूमने फिरने लग गए। अच्छा, फिर कोई दो दो डालने लग गया माला, दो माला डाल रहा, उन्हें सोचा बोड़ी आत्मा होया करती श्रद्धालु, उन्हें सोचा दोनों हाथों भक्ति करता होगा, यो गुणा भगत। और दो चार चार गालन लाए गए, वो और गणे भगत मान लिए, उनकी पूजा कर लेंगे। तो ये कहते हैं परमात्मा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये माला गल में गालने से अपने आप को मुक्त समझते हो? नहीं। और सट दल उवा बाई बकदा, इन सट दला में ये जो ये चार संप्रदाय कौन सी है, चारों शंकराचार्यों से जो चला है ना मार्ग, और इन चारों शंकराचार्यों का विधान आप पढ़ लो तो हंसी आवा अपना ईव अब आवे, पहले तो नहीं पता था। तो यहां ये बता रहे हैं कि सटदल उवा बाई बकदा, ये सटदल माने छह प्रकार के जो भेख बना रखे हैं, ये सब उवा बाई बकते हैं, इनको यथार्थ क्या नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, ये वैरागी बने फिर कहते इनको वैराग का पता है कोई नहीं। अब इसके ऊपर आगे बताया है, बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार पच्चीसों लड़के ये दूंदू धार मचावे हैं। अब यहां क्या बताते हैं कि वैरागी बन गया, वैराग ले लिया, घर छोड़ दिया, घर तो छोड़ दिया। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी, पांच नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव ऋषि जी ने बाल ब्रह्मचारी रह करके और आकाश में भी उड़ने की सिद्धि उसको प्राप्त थी, सब जगह घूम भटक लिया, लेकिन उसको भी वस्तु नहीं मिली, जब तक संत नहीं मिले, पूरे संत नहीं मिले, उनको भी राहत नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला। क्या कहते हैं, तूने एक नारी त्याग दी। अब देखो भगत जो आदमी भक्ति करता है वो घर त्यागता किस लिए है, कि मेरे मेरी पत्नी मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं कि एक नारी तो त्याग दी तने, भक्ति में बाधक जान के, अरे ये पांच नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये पांचों नारी तेरे साथ रे, इन त्याग, इन चेत तो घर में रह के त्याग, और चाहे जंगल में बैठ के त्याग, तब मोक्ष प्राप्ति होगी। उस इनको ये त्यागने को बालकों का खेल नहीं, इसको त्यागने के लिए विधि है, यथार्थ मंत्र है, उनके जाप से कुछ दिनों के अंदर अपने आप शरीर में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होने लग जाएगी, आप चाहते हुए भी विकारों को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, प्रेरित नहीं हो पाओगे, ऐसी स्थिति शरीर की बन जाएगी। तो वो मंत्र एंटीबायोटिक है, वो तने मिले नहीं, उनके ना मिलने से एक नारी त्याग दी और जंगल में चला गया। कहते हैं एक नारी त्याग दी नी, पांच नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करी वो सैल वे। कहते हैं सुखदेव ऋषि बहुत घूम लिया, तुम तो पृथ्वी पर घूमते हो, वो ऊपर के लोकों में भी चला जाता था तो भी मोक्ष का रास्ता नहीं मिला, उसको मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, ये बैरागी बैराग नहीं समझ रहे, और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर लगे नहीं, यानी यथार्थ ज्ञान यथार्थ भक्ति विधि सतगुरु के बिना मिले नहीं, और तब तक मोक्ष हो नहीं सकता। बारा बाट बिटम्ब बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, इन सट दर्शनों में सिन्यासी गिरी पुरी नागा उगड़ और ये नाथ कनपाड़े सुके नाथ, कहते इनमें भक्ति जन्म ठगने की है, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बोली आत्माएं। बारा बाट बिटम बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगोरी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। सन्यासी दस नाम कहा में शिव शिव करे न संत से जावे। निर्वाणी नी कछ निसारा भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। देख कमाल कर दिया, कहती है सन्यासी जो है ये दस नाम ही होते हैं, ये शिव को भगवान मानते, ये ब्रह्म न भूल गए, ब्रह्म तक की साधना नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में यही निर्णय दिया है। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन ये तीनों गुणों के उपासक रजगुण ब्रह्मा जी सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करने वाले, इनका ज्ञान इस त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, ब्रह्म साधना भी नहीं करते। तो यहां परमात्मा अपनी वाणी बता रहे हैं कि ये वैदा है क्या। सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे न सन से जावे। किसी का भी शंका समाधान नहीं है, किस कोई भी निरसंशय नहीं है, शिव शिव करते हैं लेकिन वो ब्रह्म की साधना भी भूल गए। और शिव जी का यथार्थ मंत्र भी और है जो ये दास आपको बताता है। सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे ना संशय जावे। निर्वाणी नी कछ निसारा भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। वो ब्रह्म लोक की साधना भी छोड़ दी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते। ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा ये भी वैदा। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी भग में प्योंदी भूले धोंदी। चल छिद्र की भक्ति ना कीजे आगे जवाब कहो क्या दीजे। यो भी वैदा है। ब्रह्म कर्म भैरो को पूजे सत शब्द साहिब नहीं सूझे। ब्रह्म कर्म अनुपासनाएं करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं और सत शब्द साहिब नहीं सूझे। सच्चा नाम सत शब्द सच्चा नाम सतनाम और सच्चा साहिब परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, वो समझ में आया नहीं। जंगम जैनी फोकट फैनी नाम ने चीन्या गुण गुरु गुण ही ना। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। नगन निराशा तन कुतरासा पशु प्राणी स्वान समानी। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलैदा यो भी बैदा। अब क्या बताते हैं, नगन जो कति निवस्त्र रहते हैं नागा, और ये जैनी लोग कहते हैं नगन ये भी निराश जाएंगे क्योंकि इनकी साधना ठीक को ना। नगन निराशा और तन कुतरासा शरीर को त्रास दे रहे हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं नंगे फिरे। अरे भगवान ने सोची दे दी, दिमाग दे दिया, अपने गर्म कपड़े पहन ले, सर्दियां में भक्ति करे पीछा छूटेगा। एक बाबा जी ने बोला मैं अवधूत हूं। अच्छा अवधूत है, ठीक है भाई। क्या उसने एक कपड़ा बांध रखा गोड्डियां तो ऊपर ऊपर का एक लंगोट और कुछ नहीं ले रखा। जनवरी का महीना और वो बैठा रात ने मैं उठा, वो छुड़ानी जा करते हम पहले वहां, ये काफी आते हैं इस तरह के बनावटी से महात्मा। और उसे दिन में बात हुई बोला मैं अवधूत हूं। अवधूत का अर्थ है बिल्कुल नहीं वस्त्र रहना, एक लंगोट और ये कपड़ा लपेट लिया करें पर्दे पर। और वो सारी रात बैठा नू को डाडा लागे भक्ति कड़ा हुई थी इस पर और तो उठ गए सोए जो। और वो बैठा बरंडे में, मैं उठा मैं बाबा जी क्या हाल है न्यू कर ना उसकी जबान खुला मैं मर रहेगा बेटी का बाप। फिर चाय लाया बनवा के उसकी खातिर, जब तक मुझे आदेश नहीं था नाम लेने का। गरम गरम चाय लाया एक गिलास सारी पी गया गट गट। मैं बोला कपड़ा उड़ा दिला, ना 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 कपड़ा नहीं। उसको भगत वो ड्रामा कर रहा है उस तरह, उसने लोग पसंद करें भाई तो बड़ा भूत आदमी हर कुछ भी नहीं लेता। तो वो भक्ति तो उसका याद रही ना, जाडा याद रहा सारी रात, सर्दी याद रही, भक्ति नहीं हो सकती ऐसी ये बनावटी बातों। नगन निराशा तन कुतरासा ये पशु प्राणी समान समानी। कहते नंगे अंडो तुम तो पशु कुत्तियां जैसे हुए भी नहीं वस्त्र फिरे सारा दिन, तो अगले जन्म में तुम्हारी ये डिमांड भी पूरी हो जाएगी। हाँ अगले जन्म में कुत्ते बना देगा तुमने हड्डी फिर। वेद पुराणी कथा कहानी
पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा यो भी वैदा। कहते हैं वेद पुराण अरे उनके ऊपर कथा कुथा बना दी। पढ़ पढ़ भूले, पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले, इनके अर्थ तुम समझ नहीं सके, इसलिए ये सारा जीवन बर्बाद कर दिया। बुल्ले जोगी रिधि के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे यो भी वैदा है व्यर्थ है। तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी, ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न वाचे। यथार्थ नाम का जाप नहीं करते और सौ पाखंड करते हैं। तपा अकाशी बारह मासी, मौनी पीठी पंच अंगीठी यो भी वैदा है। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार पीसों लड़के ये धुंधु धार मचावे हैं। अब कहते हैं ये बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये जो है शरीर पर राख लपेट ली, माथे पर लाली नरी, मुंह पर लाली, हाथों के लपेट ली। कहते हैं ये इस तरह के जो तुम आडंबर किए हुए हो, इससे परमात्मा नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आपके अंदर वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सभी आपके अंदर उत्पात मचा रहे हैं। कंठी माला और मृग छाला, सिर पैर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे हैं, फिर ताना री री गावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। बैधा क्यों जाण्या, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाण्या। गरीबदास जी से पूछा कि आपने इसको कैसे समझा ये बैधा है। गरीबदास जी कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए, मुझे सतगुरु मिल गए। कबीर परमेश्वर जी जो परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए, सतलोक से चलकर मुझे वो मिले थे, इसलिए पता चल गया कि ये बैधा है, ये व्यर्थ की साधना है। कंठी ये क्या करते हैं, जो वैष्णो परंपरा है विष्णु जी के उपासक, वो तुलसी की लकड़ी की एक मनिया और एक धागे में बांध कर डालना है गले में, उसको कंठी बोले हैं। और उसी की परंपरा इस कबीर पंथ में घर कर रही है, वो भी उस कंठी के चपेट रहे हैं और माला गाली गले में। तो यहां बताते हैं कंठी माला और मृगशाला, दो सिर पे जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे हैं, फिर ताना रे री गावे, यो भी व्यर्थ है।